श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक संख्या 18 26 जुलाई 2015 स्पीकर आदि योग के।
तो यहाँ पर जो गोवर्धन की लीला प्रसंग चल रही है तो पिछले कई श्लोकों से हमें देख के आ रहे हैं भगवान जो कर्म योग है कर्म के विषय में बात कर रहे हैं। यदि वो प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी के जो संस्था है भक्ति योग के ऊपर आधारित है और भगवान भी यही बताते हैं जब तक एक व्यक्ति भक्ति योग में पूर्णता को प्राप्त नहीं करता तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। पूर्ण रूप से जब भक्ति में एक जीव स्थित नहीं होता फिर मैं उनको दर्शन नहीं देता हूँ। तो फिर बड़े अजीब बात है यहाँ पर भगवान पिछले कई श्लोकों से और आज ये आखिर श्लोक है तो ये सारे श्लोकों में भगवान ये कर्मयोगों की बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये संसार में सब कोई भक्ति मार्ग को अपना नहीं सकते हैं। कुछ कर्मयोगी होते हैं कर्म मार्ग में इच्छा रखते हैं, कोई ज्ञान मार्ग में चलते हैं, कुछ योग तपस्या करते हैं और बहुत कम होते हैं जो कि भक्ति मार्ग में आते हैं। तो जो भी है तात्पर्य के भीतर प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ये भी बता दिए अपने उनके जो निर्णय है वो कहें भले भगवान यहाँ पर कर्म मार्ग के कर्म के विषय में बात करते हैं लेकिन यहाँ पर जो उनके भक्त हैं प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं वो बताते हैं कि भक्ति योग वस्तुत पूजा तो स्वयं कृष्ण के निमित्त है, कृष्ण के निमित्त पूजा है। यहाँ पर जो पूजा वृंदावनवासी ब्रजवासी लोग किसके कर रहे थे ना इंद्र का, लेकिन यहाँ पर बताया गया पूजा केवल कृष्ण के लिए। और भगवान भी इस प्रसंग के आधारित पर कहते हैं कि हे ब्रजवासी लोग तुमको डरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोग मेरे शरण में हो। आज जब भगवान कृष्ण के आश्रय में कोई व्यक्ति है तो फिर और दूसरा कोई आश्रय की जरूरत नहीं होती है। जब एक व्यक्ति कृष्ण के आश्रय में आ जाता है तो फिर उसको और कोई आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब एक व्यक्ति समस्त प्रकार वेद तप पूजा पाठ व्रत तीर्थ वो सारे कर लेता तब जाके वो कृष्ण के शरण में आता है। ये बात नहीं है कि कृष्ण के शरण में आने के बाद और उसको ये सब नहीं करना चाहिए, ये बात भी नहीं है, और अधिक उत्साह के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए और करना चाहिए। भगवान ये भी बताते हैं कि यज्ञ दान तप कार्य न त्याज्यम कार्य एवच। यज्ञ दान और तपस्या ये कभी मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अनित्य संसारे मोह जने मिया, ये संसार क्या है अनित्य है और इसमें जीव को मोह हो गया है। ये संसार क्षणिक है, क्षणिक सुख के पीछे हमें जन्म मृत्यु चक्र में अटके हुए हैं। तो इसीलिए ये भगवान के शरण में न जाकर अलग अलग देवादेवी के शरण में जाते हैं। कामे स्थिते हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब जीव के भीतर काम वासना होती है तो उनका बुद्धि नष्ट हो जाती है और बद्ध जीव अपने इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग देवादेवियों के शरण में जाता है, भगवान श्री कृष्ण का शरण को छोड़कर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शरण में जो आता है तो उनका इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती है। इसीलिए जो लोगों के भीतर भोग वासनाएं प्रबल होती है खास करके बद्ध जीवों के भीतर भोग करने की इच्छा इतने प्रबल होती है वो भगवान का शरण को ठुकरा देता है। और क्षणिक सुख प्रदान करने वाले ये नश्वर जो देवादेवी है उनका आश्रय में चला जाता है। वो देवादेवी भी वो नश्वर है क्षणिक है, वो स्थाई फल प्रदान नहीं कर सकते अपने उपासकों को। देवादेवियों के जो उपासक होते हैं वो लोग भी वो जिनके उपासना करते हैं वो भी स्थाई नहीं है, वो फिर वो स्थाई फल कैसे प्रदान करेंगे? यदि कोई हमें चिर स्थाई फल प्रदान करते हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। भगवान भी भगवद गीता में ये बात बताते हैं कि सर्वधर्म परित्यज माम एकं शरणं व्रज। और सारे प्रकार का आश्रय छोड़कर जब एक व्यक्ति मेरे शरण में आता है मैं उनका विशेष रूप से देखभाल करता हूँ, मैं उसका विशेष रूप से देखभाल करता हूँ। लेकिन जैसे हमारे भीतर काम वासना आता है, आता है, तो भी हमें भगवान को नहीं समझ पाते, क्योंकि भोग या योग, भोग और योग ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जहां पर भोग है उसके हृदय में योग नहीं हो पाता है। योग मतलब भगवान के साथ संबंध। जिसके हृदय में भोग है, जिसके हृदय में भोग है तो योग नहीं कर सकता। योग मतलब भगवान के साथ अपने जो पहचान है वो जोड़ नहीं सकता। तो हमारा बुद्धि नष्ट हो जाती है, भोग से हमारा बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार यहाँ पर इंद्र का बुद्धि एक प्रकार का नष्ट हो गई है, नहीं तो वो ब्रज को नाश करने के लिए सोचा नहीं होता। यदि इंद्र का, देखिए इंद्र कहाँ रहते हैं, देवता है, हमारे से कितने ऊंचे लोग है, हाँ वो स्थान उनका कहाँ है, कितने ऊंचे लोग में रह रहे हैं, फिर इतने उच्च लोग में रहने वाले व्यक्तियों के भीतर भी भोग वासना चलती रहती है। तो यहाँ पर एक सुझाव दिया जाती है, तो स्वर्ग तक भी, ब्रह्मलोक तक भी ये भोग वासना चलती रहती है। वो लोग इतने, ऐसे लोगों के भीतर भी भोग करने की जो बुद्धि है वो रहती है, ऐसे लोगों के भीतर भोग करने की बुद्धि भी रहती है, भले इतने ऊंचे लोग में रहना क्यों। जब एक व्यक्ति के भीतर ऐश्वर्य आ जाती है तो उनका बुद्धि ठिकाना में नहीं होता है। ऐश्वर्य आने पर यदि भगवान का भक्ति होती है तो ठीक है। जैसे धन एक ऐश्वर्य है, धन एक ऐश्वर्य है, लेकिन धन को यदि वो भगवान का सेवा में इस्तेमाल करता है और उसके साथ साथ वो नम्र है तो ठीक है। नम्रता के साथ अपने धन को यदि भगवान की सेवा करता है तो फिर ठीक है, लेकिन यदि घमंड आ जाता है तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बात में ये बात बताया गया, अर्थ इंद्रिय अर्थ अभिधानम सर्व अर्थ अपहन्न नृणाम। जब एक व्यक्ति धन का रोजगार करता है, धन रोजगार करता है और रोजगार किया हुआ धन को अपने इंद्रिय तृप्ति में खर्च करता है तो उनका पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। अर्थ इंद्रिय अर्थ, अर्थ को यदि इंद्रिय अर्थ में अभी ध्यानम चिंता ये करता मैं कैसे धन कमाऊं और धन को इंद्रिय तृप्ति में गमाऊं लगाऊं, तो उनका पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। सर्व अर्थ, सर्व अर्थ मतलब उनका पुरुषार्थ, सर्व अर्थ अपहन्नम नाश हो जाता है। हाँ, और क्या होता है ना, भ्रंसितो ज्ञान विज्ञान जेन आभिषत मुख्यम। और ऐसे धन को इंद्रिय तृप्ति में लगाने वाला व्यक्ति का बुद्धि क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। भ्रंसित ज्ञान विज्ञान, वो आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है वो भूल जाता है। आत्म साक्षात्कार करने की जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से उच्चित हो जाता है। भ्रंसित ज्ञान विज्ञान, ज्ञान भ्रंसित भ्रष्ट हो जाता है, किससे ना ज्ञान से, उनके भीतर ज्ञान नहीं रहता। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करेगा उनके भीतर ज्ञान नहीं रहेगा, उनका ज्ञान खत्म हो जाएगा, वो पशु के लिए स्तर पर आ जाएगा। पशु लोग केवल इंद्रिय तृप्ति जानते हैं लेकिन मनुष्य भक्ति जानते हैं। पशु केवल इंद्रिय तृप्ति करना जानता है लेकिन मनुष्य भक्ति जानता है। लेकिन जब मनुष्य जब इंद्रिय तृप्ति करने लग जाता है तो उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। भ्रंसित तो ज्ञान विज्ञान, विज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है, आत्म साक्षात्कार जो है वो आत्म साक्षात्कार को भूल जाता है। अब वो दो चीज को जब एक कोई जीव भूल जाता है तो फिर प्रकृति के नियम के अनुसार वो कहाँ चला जाता है, स्थावर या पेड़ जोनी में चला जाता है। मनुष्य जब इंद्रिय तृप्ति करता है, भागवत में बताया गया, मनुष्य जब इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो कहाँ चला जाता है, पेड़ या स्थावर जोनी में, पहाड़ पर्वत बन जाता है, पेड़ बन जाता है। और आज पूरा सारे को समाज यही कर रहा है, किसी भी प्रकार धन कमाओ और धन को इंद्रिय तृप्ति में लगा दो, सारा समाज यही कर रहा है। मतलब एक प्रकार के स्थावर जुनी या पेड़ पौधे जुनी में जाने की ये मनुष्य जीवन तैयारी कर रहा है। यदि वो मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करने के लिए मिला है, लेकिन हमें ये वो तैयारी को भूल करके, भगवत धाम जाने की तैयारी को भूल करके हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे या पहाड़ पर्वत स्थावर जुनी के जाने में प्रस्तुत कर हो रहे हैं। लेकिन ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे लोगों का धन को कृष्ण भावनामृत में लगा करके उनको ये आत्महत्या से बचाते हैं। इंद्रिय तृप्ति करना मतलब एक प्रकार का आत्महत्या है। हाँ, लेकिन ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत सेवा में लगा करके उनको एक प्रकार से आत्महत्या करने की पाप से बचाता है। भगवान भी ये बात बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जैसे मैं भोग के प्रति, और हमारे पास जो भी तथाकथित ऐश्वर्य है ही नहीं कुछ, मलमूत्र में ये शरीर है, लेकिन अहं बुद्धि जब आ जाता है, भोग ऐश्वर्य भगवान कह रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जब एक व्यक्ति भोग के प्रति आसक्त चित्त हो जाता है, अपने तथाकथित ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाता है, भोग उनका बुद्धि हर लिया जाता है। किसके द्वारा? ना भोग के द्वारा, भोग हमारा बुद्धि को हर ली है। जब भोग के द्वारा हमारा बुद्धि हर लिया जाता है तो हमारा मन दूषित हो जाता है, और दूषित जब हृदय हो जाती है, मन जब दूषित हो जाती है, समाधौन विधीयते, हे अर्जुन, जब किसी का मन दूषित हो जाती है तो फिर वो मेरा भक्ति को नहीं कर पाता, मेरा भक्ति उनको, उनके लिए मेरा भक्ति नहीं है। जिनका मन दूषित हुआ है तो उनके लिए मेरा भजन नहीं है। जब एक व्यक्ति भौतिक अवस्था में रहता है तो उनको तीन चीजों की जरूरत होती है, एक है धन, एक है स्त्री, एक है प्रतिष्ठा। भौतिक अवस्था में जब एक व्यक्ति रहता है तो उनके लिए तीन चीज की जरूरत होती है, धन, स्त्री, प्रतिष्ठा। आप लोग कथा सुने होंगे, चित्रकूट महाराज के पास ये सारे को सारा था, उनके पास धन था और उनके बहुत सुंदर थे, उनके पास बहुत सारे 1 करोड़ स्त्रियों के साथ उनका विवाह हुआ था, फिर भी वो दुखी हुए थे, फिर भी वो दुखी थे। क्यों ना? वास्तव में हमें क्या चाहिए, असल में हमें क्या चीज की जरूरत है, वो कोई ज्ञान हमें नहीं है। हम क्या चाहिए, हमें जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य, हमारा स्वरूप जो है कृष्ण का नित्य दास है, तो हमें चाहिए क्या, वही चीज की ज्ञान हमें आज नहीं है, इसलिए आज हमें दुखी है। पहले के समय से आज लोगों के पास कितनी सुविधाएं हैं, ट्रेन है, गाड़ी है, बस है, प्लेन है, 1 घंटे में मैं कहां से कहां चले पहुंच जाते हैं। पहले समय लोगों के पास इतना सुविधा नहीं थी, टीवी, फ्रिज, गोदरेज, वॉशिंग मशीन, क्या क्या चीजें नहीं है, लेकिन इतने होने पर भी आज इतने लोग दुखी क्यों है? इतने सब सुविधा होने पर भी लोग इतने दुखी क्यों है? आपके घर के फ्रिज को कितने बार खोलते हो? जितने बार फ्रिज को खोलते हो क्या उतना बार भगवद गीता खोलते हो? उतना बार यदि भगवद गीता खोलते हो ना, जीवन सफल हो जाता। एक भक्त बता रहे थे, जिस गृहस्थों के घर में टीवी का एंटीना लग गया तो समझ लो वो गृहस्थों के घर में कलियुग का झंडा लग गया। इसलिए जो लोग भक्त है, हमारा इस्कन का एक कंडीशन थी, जो लोग इस्कन में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके घर में टीवी नहीं होना चाहिए। टीवी का खर्चा जितना होता है, भगवान का पूजा का खर्चा इतना नहीं होता है। हमारा घर में टीवी का खर्चा देखेंगे कितना लग जाती है। क्या उतना हमें भगवान का सेवा में हमारा धन को इस्तेमाल करते हैं? दूरदर्शन, वो क्या हमें दर्शन कराएगा? सुबह होते ही दूरदर्शन, अरे भागवत ही हमें प्रकृति दर्शन कराएगा। ये जो भागवत महापुराण, ये हमें प्रकृति, वो वैकुंठ का दर्शन कराएगा, ये वो क्या दर्शन कराएगा? लेकिन अल्पचेत साम, अल्प बुद्धि, कलयुग में लोगों की बुद्धि मारी गई है। प्रायण अल्पायुष कलेयस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो, सब हतभागा है, कलयुग में सबका बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कलयुग के प्रभाव से सब आध्यात्मिक दृष्टि से आलसी है, कमजोर है, इसलिए वो महत चीज को देख नहीं पाता है। सत्य को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए उनके भीतर शक्ति नहीं है। उसे पहले हमें सुन के, और आप लोग सुने होंगे, हमें भी सुने हैं लेकिन देखे नहीं है। पहले समय बड़े बड़े घरों में सोने की प्लेट हुआ करता था, जब अतिथि लोग आया करते थे तो उनको सोने की प्लेट में भोजन दिया जाता था। फिर समय जब बदला, सोने गया, सोना के प्लेट गया, फिर चांदी आया। और आज भी हमारे कंग्रीगेशन भक्त हैं थाने में, जब उनके घर में हम जाते हैं तो चांदी के प्लेट में फल काट करके देते हैं और चांदी के गिलास में हमें पानी देते हैं, जल देते हैं। तो पहले मैं जब गया तो दिए तो मैं पहचान नहीं पाया, ये चांदी का प्लेट ही क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। तीन चार बार जाने के बाद और बार बार जब भी जाते थे वही चांदी के प्लेट में फल और चांदी के ग्लास में जल ये देते थे। तो तीन चार बार के बाद तो मैं फिर लास्ट में मैं देखा अच्छे से ये क्या प्लेट है, ये स्टील का प्लेट इतना चकचक कर रहा है उसमें ना देखे ये क्या है, कौन सा प्लेट है। तो जब देखा अच्छे से तो फिर मुझे पहचान में आया ये चांदी है। तो मतलब आज भी चांदी का प्लेट में लोग अतिथियों को कुछ देते हैं। तो एक समय ऐसा था तो मतलब अतिथियों को चांदी के प्लेट में भोजन दिया करते थे। फिर चांदी गया, फिर कांसा आया, फिर उसके बाद पीतल आया, फिर आज हमें कैसे प्लेट में खा रहे हैं, यूज एंड थ्रो कागज के प्लेट में खा रहे हैं। आज हम कागज के, कहां सोने की प्लेट में खाने वाले लोग आज गिरते 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 कागज के प्लेट में खा रहे हैं। इसमें कोई प्रगति हुआ? सोने के प्लेट में खाने वाला व्यक्ति आज कागज का प्लेट में खा रहा है तो प्रगति है, तब मैं समझ सकते हमारा कितना बड़ा औद्योगति हुआ है। इसीलिए प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में जब एक बार प्रवचन कर रहे थे तो उनके लोग उनके सामने उनके विदेशी शिष्य लोग बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी कह दिए, प्रभुपाद जी कह दिए भले तुम लोग विदेशी लोग हो लेकिन कृष्ण से यदि आप लोग 300 फीट दूर हो, प्रभुपाद जी कहे कि यदि आप लोग कृष्ण से 300 फीट दूर हो फिर इतने दूर होने के बाद भी आप लोग क्या किए हो ना, कृष्ण की ओर चल पड़े हो, लेकिन इंडियन लोग कृष्ण से बिल पास जस्ट 3 फीट दूर है। आप लोग कृष्ण से 300 फीट दूर लेकिन इंडियन कृष्ण से 3 फीट दूर है। 3 फीट दूर में होने के बाद भी वो कृष्ण से मुंह मोड़ करके चल रहे हैं। आप लोग 300 फीट दूर हो लेकिन कृष्ण की ओर चल रहे हो, लेकिन भारतीय लोग कृष्ण से 3 फीट दूर है फिर भी कृष्ण से मुंह मोड़ करके चल रहे हैं, तो भाग्यवान कौन है? प्रभुपाद जी बोले भाग्यवान कौन है। तो प्रभुपाद जी की ये बातों से हमें समझ सकते हैं कि हम भाग्यवान हैं कि हतभागा हैं। हम पिछले पढ़ के आए कि बद्ध जीव अपने स्वभाव से मजबूर है, अपने जो स्वभाव है वो छोड़ नहीं सकता। हाँ कब छोड़ सकता है, जब उनके हृदय में जो भक्ति उत्पन्न हो जाता है। ये आदत हमारे जो प्रकृति है उनको कितने भी ज्ञान के प्रक्रिया के द्वारा हमें उससे हमें मुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती है। बड़े बड़े योगी ज्ञानी लोग आगे भी ये बात आएगा, हाँ स्वभावस्तम मानुषिम आसुरम देवताम। स्वभाव स्तम कल के क्लास में सुने हैं, स्वभाव स्तम स्तम मतलब स्थित रहते हैं। कहाँ कौन ना मनुष्य लोग, देवता लोग इतने बड़े लोग, देवता भी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाते। स्वभाव स्तम मानुषम देवताम आसुरी असुर लोग, देवता लोग, मनुष्य लोग, ये लोग कभी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाते क्योंकि जीव का जो पूर्व जन्म का जो कर्म वासना है वो इस जन्म में उनके भीतर पड़ा हुआ है। जो कर्म वासना जीव का पूर्व जन्म में थी वही वासनाएं उनके भीतर पड़ा हुआ है। यही वासनाएं उनको प्रेरित करता है गलत करने के लिए, चाहता नहीं है लेकिन उनको गलत कराने के लिए मजबूर कराता है। उनके भीतर ऐसा कौन सा एक शक्ति है उनको प्रेरित कराता है गलत करने के लिए। जैसे यहाँ पर कोई अभी प्रवचन चल रही है, एक व्यक्ति बैठा है लेकिन उनको शराब पीने की आदत है। हमें ये नहीं मैं कहूंगा कि वहां पे शराब ही कोई बैठा है, मैं ऐसे कह रहा हूं कि कोई ऐसे शराब पीने की किसी को आदत है, भले वो प्रवचन में बैठा है भगवान के सामने बैठा है लेकिन उनको मन कौन दौड़ रहा है कैसे प्रवचन से मैं उठूं एक बोतल शराब पी लूं। भले यहां पर कहा जा रहा है कि शराब पीना बुरा है, जानता है, सुन रहा है शराब पीना बुरा है, फिर भी उनका मन भाग रहा है क्योंकि उनका आदत है। ये जो कर्म की संस्कार क्रिया इतने मजबूत है। जतति ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मन। हरन्ति प्रसभं, प्रसभं जबरदस्त, हमें चाहते नहीं है, हरन्ति प्रसभं मन, हमको प्रसभं मन जबरदस्त हमें घुसाड़ के लेकर के पाप करा देता है। कितने हमें चेष्टा करते, जतति ही अपि कौन्तेय, हे अर्जुन भगवान बताते हैं, हे अर्जुन जतति ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित, ये इंद्रियों को रखें आयत्त में रखने के लिए कितना प्रयास किया जाता है, फिर भी इंद्रियाणी प्रमाथिनी, ये इंद्रिय इतने बलवान है, हाँ वो हमको जबरदस्त धक्का मार के गलत करा लेता है। अभी प्रवचन सुन के उठा है, जैसे वो मंदिर के बाहर जाता है वो शराब के दुकान में चला जाता है। इसीलिए स्वभावस्तम मानुषिम देवता आसुरम, भले देवता लोग है। एक बार महाभारत की कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो गए और सारे पांडव लोग सोचने अभी क्या करना है, एक तरफ जैसे ही सुने भगवान और धराधाम में नहीं है, कुंती महारानी सुनते ही शरीर छोड़ दिए। जब कुंती महारानी को पता चला कि और भगवान ये धराधाम में नहीं है, तुरंत सुनते ही वो शरीर त्याग दिए। और एक तरफ कुंती महारानी का दाह संस्कार हो रही है, दूसरा तरफ परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक हो रही है, तीसरे तरफ सारे पांडव लोग घर बार छोड़ करके निकल जा रहे हैं। जब निकल जा रहे थे, हाँ युधिष्ठिर महाराज आगे चल रहे थे, उनके भाई लोग पीछे पीछे चल रहे थे, तो चलते चलते पहले सहदेव गिर गए। तो भीमसेन कहे, महाराज महाराज, हे धर्मराज, ये सहदेव गिर गए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, तुम चलते रहो। भीमसेन ने पूछे, प्रश्न किए, महाराज बताओ ये सहदेव का गिरने के कारण की पांडव लोग कितने धर्म में स्थित होते थे, और ये बात को पितामह भीष्म कहे थे, इतने कष्ट तुम लोगों के ऊपर आया, इतने कष्ट में कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन अच्युत धर्म और ब्राह्मण अच्युत धर्म, ये तीनों का आश्रय लेने के कारण आप लोग का रक्षा हो गई। पितामह भीष्म पांडव को कहे, तो इतने धर्म में स्थित होने के बाद भी उनका पतन हुआ है, यदि उनका पतन नहीं है, भगवान ये दिखाए। जब सहदेव जी गिर गए तो भीमसेन ने प्रश्न किए, हम लोग तो धर्म में स्थित थे, तो महाराज बताओ, युधिष्ठिर महाराज, हे धर्मराज बताओ, ये सहदेव का गिरने की कारण क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि ये जो सहदेव है, तो हमेशा अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी सोचते थे, मानते थे, उनका जो ये ज्ञान है, ये उनका जो ये ज्ञान की जो अहंकार है, वो अहंकार उनको गिराया। तो फिर चलते रहे, फिर थोड़े जाके नकुल गिर गए। तो नकुल जब गिर गए तो भीमसेन पूछने लगे, महाराज नकुल गिर गया, नकुल का गिरने का कारण क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, ये जो नकुल है, ये हमेशा अपने को बहुत बड़ा सुंदर मानते थे, उनका जो सुंदरता का जो अहंकार है उनको गिराया। देखिए, एक एक चीजों के लिए हमें अहंकार पतन की कारण है, हम भूल जाते हैं भगवान को। फिर चलते रहे, फिर जाने के बाद फिर अर्जुन गिर गए। फिर भीमसेन प्रश्न किए, महाराज अर्जुन गिर गए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, ये अर्जुन हमेशा अपने को बहुत बड़ा गांडीवधारी समझते थे, उनका जो ये अहंकार है उनको गिराया। तो थोड़े आगे जाने के बाद स्वयं भीमसेन गिर गए। जब भीमसेन गिर गए तो गिरे गिरे वो प्रश्न किए, महाराज बताओ मेरे गिरने की कारण क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, हे भीमसेन, आप हमेशा बहुत भोजन करते थे और हमेशा अपने को बहुत बड़ा, दूसरों से बहुत बड़ा शक्तिशाली मानते थे, बहुत बड़ा बलशाली मानते थे। आपका जो ये जो प्रवृत्ति है, जो अपने को बहुत शक्तिशाली मानना, ये चीज आपको गिराया। और अकेले युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग की ओर चल पड़े। तो कहने की बात ये है, ये पांडव लोग कोई साधारण जीव नहीं थे, साधारण कर्मबाध्य जीव नहीं थे। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा ये दिखाए कि बद्ध जीव के भीतर जो अहंकार है, ये अहंकार उनका पतन की कारण है। यहां पर ये इंद्र ने देखा, हाँ इतना बड़ा बेखातिर मेरे प्रति, ब्रजवासी लोग मेरे एक छोटा सा बालक के कहने के कारण मेरा पूजा छोड़कर ये गोवर्धन का पूजा में लगे, इतने बड़े असम्मान, मैं सारे ब्रज को नाश कर दूंगा। ये बात को फिर कुंती महारानी बताते हैं, धनैश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान मदव कुमान नैव अहर्ति अभिधातुम त्वाम अकिंचन गोचरम हाँ, जब एक व्यक्ति के भीतर ऐश्वर्य आ जाती है तो फिर वो ऐश्वर्य युक्त व्यक्ति हे गोविंद हे कृष्ण इस प्रकार भाव विहोल होकर के वह भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकता। यदियो भगवान के नाम में इतने शक्ति है, एक नाम उच्चारण करने से हाँ एक जीव का सारे पाप नष्ट हो जाता है, वो इतना पाप नहीं कर सकता। भगवान के नाम में इतने शक्ति है, एक नाम उच्चारण करने से हाँ इतना पाप नष्ट हो जाती है, पापी व्यक्ति इतना पाप कर ही नहीं सकता। भगवान के नाम में इतने शक्ति है, वास्तव में भगवान के नाम में इतने शक्ति है, लेकिन उच्चारण करने वाला व्यक्ति का भाव कैसा है, जो उच्चारण कर रहा है उनका भाव किस प्रकार का है, किस भाव में। हमें कहीं पे रह रहे हैं, मंदिर में है, अभी इस वक्त हम मंदिर में हैं, लेकिन हमारा मंदिर में रह जब रह रहे हैं, हम मंदिर में रहते समय हमारा भाव किस प्रकार का है। हमें ब्रह्मचारी है, हमें आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन आश्रम में रहते हुए हमें किस भाव में रह रहे हैं, भाव महत्वपूर्ण है। हमें कोई भी एक गृहस्थ में रहते हुए यदि भाव उनका अनुकूल है भगवान के भक्ति के प्रति, तो वो कितने बहुत बड़े हैं। हाँ, ये भाव, ये जो भाव है वो चीज को भगवान देखते हैं। मैं क्या बता रहा था, हाँ कुंती महाराण, हाँ ये जो भगवान का नाम है हमें जप कर रहे हैं कि उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते समय उनके पीछे हमें क्या भाव है, भाव रखते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुनना अमानीन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। गर्भ दर्प अहंकार अभिमान ये सब छोड़कर जब हम भगवान का नाम को उच्चारण करते हैं तब जाके भगवत साक्षात्कार होती है, भगवत दर्शन तभी होती है। हमारा जो सड़क गोस्वामी आचार्य गण है थे, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो उनका स्थान किधर थी, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में थे, लेकिन क्या किए, त्यक्त्वा तु न अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश करुणया कोई भी न कंथाश्रित गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्न मुहु। हमारे जो आचार्य लोग है तो उनका स्थान किधर थी, लेकिन जब भजन करने में, भजन राज्य में प्रवेश किए, भजन करने में चल पड़े, हाँ जब भजन करना शुरू किए तो क्या किए, कोपी न कंथा आश्रित त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडल वे मंडलपति थे ने भूत्वादीन गणेश करुणया कोपी न कंथा। जब भक्ति करने के लिए आए तो कोपीन और कंथा ये दो चीज लिए, और हमेशा गोपी भाव में इतने कल्लोल मग्न मग्न रहते थे, ब्रजवास करते थे और गोपी भाव में वो मग्न रहते थे। आचार्य लोग भजन करने की जो प्रक्रिया है वो दिखाते हैं, जितने बस काम चल जाए, शरीर जितना शरीर का आवश्यकता है बस उतना ले करके हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए, यदि आवश्यकता से अधिक इकट्ठे करते हैं तो भोग हो जाता है, जो आवश्यकता से अधिक भी खा लेते हैं वो भी भोग हो जाता है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से, भगवान भी ये बात बताए, उतना ही खाओ जितना खाने से भगवान के साथ युक्त रहोगे, जोड़े रहोगे, और इतना ही मत खाओ उतना खाने के बाद भगवान से वियुक्त हो जाए, माइनस हो जाएगा, बिछुड़ जाओगे, इतना नहीं खाना, भले प्रसाद है बहुत सारे चीजें हैं, मुझे उतना ही लेना है जितना लेने से मेरा भगवान के साथ संबंध बना रहे, नहीं उतना नहीं खाना है कि फिर खा लेने से भगवान के साथ भगवान का स्मृति स्मरण न हो पाए, ऐसा ऐसा नहीं खाना चाहिए, ये तो फिर भोग हो गया। ये थे कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो किधर के व्यक्ति थे, वो किस घर के व्यक्ति थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए आए हाँ तो कहा क्या किए, जगन्नाथपुरी के नाला के पास पड़े रहते थे, जहां पर जगन्नाथ जी में जो किचन है, तो किचन में जो पुजारी लोग पंडे लोग जब राइस बनाते हैं तो राइस को जो पानी निकालते हैं वो कुछ 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 राइस वो पानी में निकल जाती है, वो नाला में छोड़ा दिया जाता है, और ये नाला में वो राइस पड़े पड़े सड़ जाता है, गाय भी नहीं खाती है, इतना सड़ जाती है, बास मरती है, लेकिन ऐसे भात को जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी वो नला से उठाते थे और उनको पानी में दो तीन बार धोते थे और धो करके उनको खाते थे। देखिए वो व्यक्ति किधर के थे, उनका ऐश्वर्य कितने ऐश्वर्यमय परिवार से आए हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का पारिवारिक ऐश्वर्य कितने कितने उच्च कोटि के थे, कितने बड़ा थी, लेकिन सारे ऐश्वर्य को त्याग कर दिए किसी लिए ना, भगवान का चरण कमल को प्राप्त करने के लिए, और नला से उठा करके वो भात खा रहे हैं। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका ये वैराग्य में इतने संतुष्ट हो गए, खुद ही चल पड़े, उनका हाथ से छीन करके खाने लगे। अरे रघुनाथ, तुम इतने रोज इतने स्वादिष्ट व्यंजन खा, इतने स्वादिष्ट वस्तु खा रहे, मुझे नहीं दिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहने लगे, प्रभु ये आपके लिए नहीं है। जब इस प्रकार का वैराग्य हमारे हृदय में जन्म लेगा तभी हमें चैतन्य महाप्रभु का कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। वैराग्य भक्ति मार्ग में वैराग्य प्रधान, चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे भक्त हैं वो उनके भीतर वैराग्य प्रधान है। और जब तक ये संसार के प्रति हमारा वैराग्य नहीं होती है तो फिर कुछ नहीं होगा, हम भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये गोवर्धन लीला है, इंद्र के भीतर जो ये अहंकार है, जैसे किसी के भीतर अहंकार बढ़ता है तो वो अपने स्थिति से च्युत हो जाता है। आज क्या है, आज जगन्नाथ जी वापस आ रहे हैं, अपने मौसी मां के घर में गए थे, 9 दिन का यात्रा थी जगन्नाथ जी का, अपने बड़े मंदिर छोड़कर जगन्नाथ महाप्रभु मौसी मां के घर में गए थे, और आज मौसी मां के घर से वापस आ रहे, कल पहुंचेंगे। हाँ, तो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जगत के कोने कोने से, पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से, हाँ हर कोने से लोग आते थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। तो ऐसा हुआ, एक बार हैदराबाद से एक सेठ जी आए जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए, और आए तो आए, अपने हाथ में 1,00,000 रुपए लेके आए जगन्नाथ जी के मोढ़ोई करने के लिए, जगन्नाथ जी के पास भोग चढ़ाने के लिए वो 1,00,000 रुपए लेकर के आए। और आकर के जगन्नाथ जी के जो पंडित लोग थे, सेवक लोग थे, तो वहां पर आकर के बोलने लगे, ओ देखो मैं 1,00,000 रुपए लेके आया, मैं हैदराबाद से आया हूँ, 1,00,000 रुपए में रुपए लेकर के आया हूँ, और उनको जगन्नाथ जी के पास भोग लगाओ। तो ये सुन करके जगन्नाथ जी के सेवक लोग सोचने लगे, अरे 1,00,000 रुपए में भोग क्या लगाएंगे जगन्नाथ जी के पास, सारे चिंतित हो गए। और ये जब घटना हुआ था तो उस समय वहां पे 1 लीटर दूध का दाम थी 4 पैसा, और 1 लीटर घी का दाम थी 12 पैसा। और जब 1 लीटर दूध का दाम 4 पैसे और 1 लीटर घी का दाम 12 पैसे, तो ये 1,00,000 रुपए में क्या भोग लगाएंगे, सारे जगन्नाथ जी के भक्तों लोग बड़े चिंतित हो गए, क्या भोग लगाएंगे, क्या ये सेठ जी को हमें मना कर देंगे कि 1,00,000 रुपए के भोग नहीं लगाया जा सकता। हाँ, ये तो बड़े लज्जित बात है। तो जगन्नाथ जी के पंडित लोग इस प्रकार जब चिंतित थे तो वो मन मन में विचार करने लगे, अरे चकाखी के पास हर मुहूर्त 60 पौटी भोग लगाया जा रहा है। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी के भक्त लोग हैं, सेवक लोग हैं, हर मुहूर्त 60 पौटी, ऐसे उड़ीसा में जो लोग उड़ीसा के लोग हैं जानते हैं, जगन्नाथ जी के पास 60 पौटी 60 प्रकार के भोग हर मुहूर्त में लगाया जा रहा है। और उस अवस्था में हमें ये सेठ जी जो 1,00,000 रुपए लेके आए तो क्या भोग लगाएंगे, तो सारे चिंता कर रहे थे, तो क्या करें। तो सारे सेवक लोग मिल करके सोचने लगे, अभी हमें जगन्नाथ जी को पूछे, कालिया को पूछा जाए। हाँ, उड़ीसा के लोग जगन्नाथ जी को कालिया बोलते हैं। तो उनके सेवक लोग सोचने लगे, कालिया को पूछा जाए, हाँ उनके पास 1,00,000 रुपए के भोग क्या लगा है हम लोग। तो वहां के जो बड़े पंडे थे, वो बड़े पंडे जाकर जगन्नाथ जी के सामने दंडवत हो गए, अदंडवत होकर के बड़े ही भक्ति के साथ बड़े असहाय अवस्था में जगन्नाथ जी को प्रार्थना की, हे जगन्नाथ महाप्रभु आप ही बताओ, आप ही बताओ 1,00,000 रुपए के भोग आपको क्या लगाएंगे। वो सेठ जी 1,00,000 रुपए लेकर के आए, हाँ, और यहाँ पर सेठ जी को बता दिया गया, हाँ अभी भक्त लोग जगन्नाथ जी को पूछने के लिए गए हैं, आप 1,00,000 रुपए लेके आए, आपका 1,00,000 रुपए में क्या भोग लगा जाए। और यहाँ पर सेठ जी एकदम छाती को मोटा करके बैठ गए, हाँ मैं कितना बड़ा 1,00,000 रुपए लेकर आया हूँ जगन्नाथ जी के पास, 1,00,000 रुपए में भोग लगाया जाएगा, हाँ तो अभी कालिया बताएगा क्या 1,00,000 रुपए में भोग लगाया जाए, वो बताएगा। तो इस प्रकार वो बैठे हुए थे, हाँ तो जब इस प्रकार का बैठे हुए थे तो जगन्नाथ जी, हाँ वो जो बड़े पंडित जो दंडवत करके पड़े हुए थे तो उनके सामने प्रकट हो गए जगन्नाथ, वो बड़े पंडित के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे आप इतने क्यों चिंतित हो, उठो। और बड़े पंडित जगन्नाथ जी का दर्शन किए और जगन्नाथ जी कहने लगे जाओ उस सेठ जी को बोल दो कि मुझे एक पान खाने के लिए मन है, वो सेठ जी को जाके बता दो कि मेरा इच्छा एक पान खाने के लिए, हाँ मुझे एक पान खिला दे, सेठ जी को बताओ मुझे एक पान खिला दे। और वहां के भक्तों लोग जगन्नाथ जी को पान भी कितने प्रकार के होते हैं, बीड़िया पान, खिल्ली पान, कई प्रकार के पान होते हैं, तो वहां पे उड़ीसा के लोग जगन्नाथ जी को बीड़िया पान खिलाते हैं। तो जगन्नाथ जी बोले पंडे को कि रोज रोज बीड़िया पान खा करके और अच्छा नहीं लगता, तो आप इस सेठ जी को जाके बताओ मुझे एक गोजमती लगा हुआ पान खिला दे। तो ये जो बाहर के लोग जो पान खाते हैं वो पान में एक साधारण चूना लगाया जाता है, वो चूना कहाँ से बनती है ना, समुद्र से जो शंख निकलती है, हाँ शंख, सामू का, गेंडे, आप लोग हिंदी में गेंडा और सामू का क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उड़ीसा के लोग बोलते हैं ये गेंडा सामू का, ये गेंडा और ये गेंडा जो है ये शंख जैसे है, शंख बड़ा होता है, गेंडा जो होता है छोटा, लेकिन शंख की बराबर जैसे होता है, लेकिन ये गेंडा जो है एक कीड़ा है और सामू का भी एक कीड़ा है, वो ये गेंडा और सामू का ये दोनों जल में रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, और ये गेंडा सामू का और शंख ये तीनों चीजों से चूना बनती है और वो चूना के द्वारा बाहर के लोग पान खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ जी ये पंडित को जो पंडा सेवक्त है उनको आदेश दिए कि ये सेठ जी को जाके बोलो कि मुझे गजमोती से जो चूना बनती है वो चूना लगा करके मुझे पान खिलाए। और ये जो सेवक थे पंडे तो दौड़ दौड़ के आए, हाँ, और आकर के सेठ जी को बोले, और सेठ जी भी अपेक्षा करके बैठे थे पंडा जी का, और पंडा जी दौड़ दौड़ के आए और सेठ जी को बोले, हाँ जगन्नाथ जी बोले कि आप उनको एक पान खिला दो और पान में गजमोती चूना लगना चाहिए। और ये गजमोती होती है वो हाथी के सर में होती है, और ये गजमोती सारे हाथियों के सर में नहीं होती है, कोई विशेष कोई कोई हाथी के सर पे होती है, और वो हाथी को मार करके उनके सर से गजमोती निकाला जाता है और ये गजमोती को आग में जलाया जाता है, जलाने के बाद वो चूना निकलती है। और जब ये जगन्नाथ जी के सेवक आकर के सेठ जी को बोले कि गजमोती चूना लगाया हुआ पान खाने के लिए जगन्नाथ जी का मन है, तो ये सुनते ही वो सेठ जी का मुंह फीका पड़ गया, क्योंकि हाथी मृत अवस्था में भी लाख है और जीवित अवस्था में भी लाख है, और कितना ये गजमोती चूना बनाने के लिए कितना हाथी को मारना पड़ेगा। अब मैं तो 1,00,000 रुपए लेकर के आया और एक हाथी का कीमत 1,00,000 है, और कई कई हाथियों को मारने के बाद ये गजमती चूना बनेगा। तुरंत उनका मुंह फीका पड़ गया और उनका सर भाई भाई करने लगा और रोते रोते उनका चक्कर आने लगा, वो ऐसे इतने दुखी हो गए, हे जगन्नाथ हाँ मैं क्या कर दिया, मैं तो इतना बड़ा अपराध कर दिया, मैं इतना घमंड करके आया था, हाँ मैं आपको 1,00,000 करो भोग लगाऊंगा, लेकिन एक पान खिलाने के लिए आपको मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। हाँ इस प्रकार दुखी होकर के एक लाख रुपए का जो थली है वो थली को लेकर के जगन्नाथ जी के पास गया और जगन्नाथ जी के सामने दंडवत हो गया और भय भय करके रोने लगा। उस सेठ जी इतने जोर जाकर जगन्नाथ जी के सामने रोने लगा और रोते रोते वो 1,00,000 रुपए एक थाली को जगन्नाथ जी के चरण में रख करके जगन्नाथ जी के सामने दंडवत हो गया और माफी मांगा, मुझे हे महाप्रभु मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं ऐसा सोच करके आया था ये करने के लिए, लेकिन मेरा अहंकार को आप तोड़ दिए, मेरे भीतर जो घमंड है गर्व है आप उनको तोड़ दिए। तो ये बातों के द्वारा भगवान ये दिखाते हैं जब गर्व अहंकार अभिमान ये छोड़ेंगे तब जाके हमें भगवत साक्षात्कार भगवत दर्शन तभी हमें प्राप्त होगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ऐसे ही संसार में करोड़ अनंत कोटि जीव घूम रहे, सौभाग्यवश कोई भाग्यवान, कोई ऊंचे लोक में जाता है, कोई नीचे आता है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, लेकिन भाग्यवश किसी जीव के ऊपर जब कृष्ण की कृपा होती है, जब कृष्ण की कृपा होती है तो उनको ऐसे सौभाग्यवान जीव को एक प्रामाणिक गुरु का संग प्राप्त होती है। ऐसे कई जीव घूम रहे हैं ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे घूमने वाले जीवों में कोई भाग्यवश कोई सौभाग्यवान जीव के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। जब कृपा होती है तो ऐसे कृष्ण कृपा होने वाला जीव को एक प्रामाणिक गुरु का संग होती है। जब गुरु और कृष्ण ये दोनों का कृपा जब होती है तब वो जीव को भक्ति लता भक्ति प्राप्त होती है। ऊपर जाना नीचे आना ये क्या है, ये भवरोग है जिसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अधिक थोड़े बुद्धिमान बनता है तो वो निवृत्ति मार्ग को अपनाता है, मतलब मुक्ति का मार्ग को अपनाता है। तो मुक्ति का मार्ग को कोई अपनाता है तो फिर वो भगवत धाम चला जाता है, फिर ये भौतिक संसार में वो भ्रमण नहीं करता, वो भगवत धाम चला जाता है। जत गत्व न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो फिर मेरे धाम में आने के बाद फिर वो भौतिक संसार में नहीं आता। भगवान खुद ही बता दिए भूत प्रेत का लोग भूत लोग जाते हैं, पितरों का लोग पितरों लोक में जाते हैं, लेकिन मेरा पूजा करने वाले लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन बद्ध जीव का जो स्वभाव है इस स्वभाव के कारण उनका अलग अलग प्रवृत्ति होती है। और कभी वो मन करता है उसमें स्वर्ग में जाऊं, अब भोग करने की बद्ध जीव है उनके भीतर भोग करने की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति के कारण वो ये क्योंकि कर्मकांड मार्ग है, कर्म मार्ग है, पिछले भी सुनके हैं ब्राह्मण पत्नियों का जो कर्मकांड मार्ग है, तो ये होने के कारण वो कभी कभी स्वर्ग जाना चाहता है। और ये स्वर्ग जाने के बाद जब वो जीव ये सिद्धांत में पहुंच जाता कि ये जितने सारे भौतिक जगत है ये भौतिक जगत में दो बात होती है, एक है जन्म दूसरा है मृत्यु। जितने सारे भौतिक जगत ये दो सारे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु यही दोनों चीज होती है, वो दोनों चीजों में जीव को भ्रमण करना होता है तब जाके वो निष्कर्ष में पहुंच जाता मुझे और ये भौतिक संसार में भ्रमण नहीं करना, तब जाके कोशिश करता है चेष्टा करता है भगवत धाम जाने के लिए। तो कहने की बात ये है हमें भक्ति योग को हमारा जीवन में स्वीकार करना चाहिए। कल के श्लोक में भगवान यही बात बताएंगे कि ये कर्म मार्ग को छोड़ो, ज्ञान मार्ग छोड़ो, योग मार्ग छोड़ो, केवल भक्ति मार्ग। कल के श्लोक में भगवान साफ साफ बता देंगे, अभी तो कर्म की बात कर रहे हैं, कल पता चलेगा भगवान कहते हैं कि मेरा भक्ति को स्वीकार करो, मेरा भक्ति को अपनाओ। कर्म मार्ग में हमारा शुद्ध नहीं होगा, ज्ञान मार्ग योग मार्ग ये सब मार्ग में जीव शुद्ध नहीं होगा, जब भक्ति करेगा तो भक्ति से पूरा पूरा शुद्ध हो जाएगा। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग ये सब भक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, सॉरी भक्ति ये कर्म और ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं है। जिसके पास कर्म योग भी नहीं है, मतलब जो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, और जो जिसके पास ज्ञान मार्ग में जो लोग नहीं है, मतलब जो बहुत बड़ा मूर्ख है, ऐसे पापी मूर्ख व्यक्ति भी जब भक्ति को अपनाता है भगवान बताते हैं कि माम एव एस्यसि असंशय। एक पापी एक मूर्ख व्यक्ति यदि भक्ति को स्वीकार करता है माम एव एस्यसि असंशय, हे अर्जुन एक मूर्ख व्यक्ति है पापी व्यक्ति मेरा भक्ति करता है मेरा धाम को प्राप्त करता है। लेकिन योगी लोग कभी कभी ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं। आप प्रलय के समय जब ब्रह्मा जी अपने धाम छोड़कर भगवत धाम जाते हैं तो अपने धाम के सारे लोगों को वो अपने धाम में ले जाते हैं। यह कहा गया है ब्रह्मणा से कर्म, वेदों में बताया गया। जब ब्रह्मा जी अपने धाम से प्रलय के समय भगवत धाम जाते हैं, ब्रह्मलोक में जितने सारे बासिंदा है सबको लेके चले जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मांग च व्यभिचारण भक्ति जोगे न सही बते सौ गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान का चरण कमल में प्रपन्न हो जाता है और भगवान का भक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, तत्क्षणात, और देरी नहीं है, तत्क्षणात उनका पाप का जो प्रतिक्रिया है वो तुरंत बंद हो जाती है। ज्ञान मार्ग में दोष है, ज्ञान मार्ग में लाभ क्या है ना, ज्ञान मार्ग में चलने वाले व्यक्ति कभी नरक जीवन नरक में नहीं गिरेगा, नरक में कभी पतित नहीं होगा। लेकिन कर्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति नरक में पतित होने की संभावना रहती है। लेकिन ज्ञान मार्ग यदि दोषमय है फिर भी एक व्यक्ति नरक जीवन से रक्षा मिल हो जाएगा उसका। यदि ज्ञान मार्ग में भी दोष है लेकिन नरक जीवन में नहीं जाएगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में चलने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अपने को मुक्त मानी ना, अपने को बहुत बड़ा मुक्त मानते हैं। यही दोष है, समस्या यही है कि वो अपने को भगवान के साथ एक मानते हैं। यही अभी भक्ति को प्राप्त न होने के कारण, यदि वो बहुत ऊंचा जगह में पहुंच जाते हैं, ब्रह्म में पहुंच जाते हैं, वो ब्रह्म में पहुंच जाते हैं फिर भी वहां से वो लोग पतित हो जाते हैं। बहुत कष्ट करके, बहुत परिश्रम करके इतने उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन भगवान के चरण कमल की स्वाद का अनुभूति न होने के कारण, इतने ऊंचे स्थान पर होने के बाद भी वहां से पतंती अध, उनका पतन हो जाता है। तो इतना ही यहाँ पर कहना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो कर्म मार्ग के विषय में बताए हैं तो हमें कर्म मार्ग में नहीं चलना है। हाँ, ब्रजवासी लोग शुद्ध भक्त हैं, भगवान ताजुब रह गए, ये मेरा ब्रजवासी भक्त लोग जो उनके लोम लोम में भक्ति निखरती है, ये लोग कर्मकांडी देवताओं के शरण में क्यों जाते हैं। यदि भक्तों को कोई देवादेवियों के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, भक्तों को कोई देवताओं के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। देवताओं का सम्मान अवश्य करना है, एक साधारण व्यक्ति को तो भक्तों को सम्मान करना है, एक साधारण सा व्यक्ति को सम्मान करना है, फिर देवता लोग कितने ऊंचे हैं। लेकिन देवताओं के आश्रय नहीं लेना चाहिए, उनका शरण में नहीं जाना चाहिए। शरण एकमात्र भगवान है, शरण एकमात्र भक्ति है। यही बात को भगवान श्री कृष्ण जो ब्रजवासी भक्त लोग ये इंद्र जैसे देवता, इंद्र को आप पूजा करने देखें, कर्मकांड पद्धति को अपना करके वो अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहे थे तो वहां पर एक बहुत बड़ा ठुक्कर लगाया, वहां पर है बहुत बड़ी उनके भीतर देवता और भगवान के भक्ति के भीतर एक बहुत बड़ी तफात पृथकीकरण कर दिए। कल हमें पता चल जाएगा कि मेरे प्रति किया हुआ भक्ति वो सारे स्थिति से वो व्यक्ति को ऊपर करा सकता है, चाहे व्यक्ति कैसे भी स्थिति में होना क्यों। मेरा भक्ति उनको कहते गया गुजरा, कितने भी घृणित व्यक्ति हो वो घृणित स्थान से उनको ऊंचा पद स्थान कर सकता है। तो इसीलिए भगवान आज के प्रसंग के द्वारा हमें एक चेतावनी देते हैं कि मेरे शरण में आओ, मेरे भक्ति को स्वीकार करो, तभी जाके इसी जन्म में मेरे धाम को प्राप्त कर पाओगे। तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करना है कि भगवान का धाम को पहुंचना है तो हमें एक ही रास्ता है, ये भक्ति का रास्ता। और ये भक्ति क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एनी क्वेश्चन, कुछ प्रश्न है, कमेंट आए गौर प्रेमानंदे। हाँ द्रौपदी थे, लेकिन द्रौपदी को पता चल गया कि द्रौपदी सुभद्रा थे, लेकिन जब पांडव लोग निकले तो वो लोग उनको पूछ नहीं रहे, तो पूछ नहीं रहे तो द्रौपदी और सुभद्रा ने तुरंत अपने पतियों का एक कारोबार को देख के भगवान का चरण कमल को ध्यान करने लगे। अब भगवान का चरण कमल को ध्यान करके भगवान का धाम को प्राप्त हो गए, भगवान का धाम को प्राप्त हो गए है। लेकिन जब आखिर समय हुआ, वो आखिर समय में उनका पति लोग उनको पूछ नहीं रहे, तो द्रौपदी को पता चला।